एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं, वेद।
हाँ, वेद मतलब हजारों साल पुराना ज्ञान।
बिल्कुल। और ये वो ज्ञान है जिसने हमारी मतलब भारतीय सभ्यता की नींव रखी है।
पर ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वेद सिर्फ क्या कहते हैं, पूजा पाठ वाले ग्रंथ नहीं है।
हाँ।
ये तो असल में अस्तित्व क्या है, चेतना क्या है, ये दुनिया चलती कैसे है, इसमें हमारी जगह क्या है, इन सब मतलब बड़े बुनियादी सवालों का एक बहुत ही गहरा, बहुत सोचा समझा हुआ ढांचा पेश करते हैं। सही कहा। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले की ये सोच आज भी हमारे अपने जीवन के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि आजकल की साइंस और फिलॉसफी के लिए भी मायने रखती है।
हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि वेदों के इस मतलब अथाह ज्ञान सागर से कुछ जरूरी, कुछ खास मोती निकालें
और समझें कि वो हमारे आज के जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं, कैसे रोशनी दिखा सकते हैं।
बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर।
अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भैया लिखे किसने।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है क्योंकि वेदों के साथ ना ये लेखक वाली बात थोड़ी अलग है। इन्हें कहा जाता है अपौरुषेय।
अपौरुष्य
इसका मतलब
किसी
पुरुष या इंसान ने नहीं रचा। परंपरा ये मानती है कि ये डिवाइन नॉलेज है, दिव्य ज्ञान, जो पुराने जमाने के ऋषियों ने बहुत गहरे ध्यान में, मेडिटेशन में सुना, रिसीव किया।
अच्छा, सुना मतलब लिखा नहीं, सुना।
हाँ, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं, यानी सुना हुआ। तो ऋषि जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, कई बड़े नाम हैं।
हाँ, सुने हैं ये नाम।
तो इन्हें आजकल के जैसे राइटर या ऑथर नहीं मानते, इन्हें दृष्टा मानते हैं, जिन्होंने सच को देखा, विजनरीज।
दृष्टा, विजनरीज मतलब उनकी क्वालिफिकेशन कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी साधना, उनकी चेतना का स्तर था।
बिल्कुल। वो बस एक माध्यम थे उस शाश्वत ज्ञान के। पर यह आइडिया अपने आप में कितना गहरा है कि ये इंसानी दिमाग की उपज नहीं है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
और हाँ, इस पर विद्वानों का एक और नजरिया भी है। वो कहते हैं कि शायद ये किसी एक ऋषि की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के, मतलब हजारों सालों में, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, कई सारे आध्यात्मिक खोजियों, दार्शनिकों के सामूहिक ज्ञान, उनके अनुभवों का निचोड़ है।
अच्छा, तो ये एक तरह से कलेक्टिव विजडम है।
हाँ बिल्कुल। तो इनका जो अधिकार है, इनकी जो अथॉरिटी है, वो किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं आती। वाह, आती हजारों साल के अभ्यास से, और अनगिनत साधकों ने उस ज्ञान को जिया है, परखा है। तो ये ज्ञान एक बहती नदी जैसा है जो समय के साथ और गहरा और साफ होता गया।
वाह, बहती नदी जैसा ज्ञान, क्या बात कही। तो ये तो साफ हो गया है कि वेद कोई एक किताब नहीं है, ये तो ग्रंथों का एक पूरा संग्रह है, एक तरह की लाइब्रेरी।
बिल्कुल। और ये हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म की मतलब जड़ें हैं, फाउंडेशन है। इनका मकसद सिर्फ रीति रिवाज बताना भर नहीं है।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, इनका मकसद है ब्रह्मांड, इंसान और वो जो परम शक्ति है, परमात्मा है, उनके बीच का जो रिश्ता है उसे समझाना, एक पूरा वर्ल्ड व्यू देना।
और इस वर्ल्ड व्यू के सेंटर में क्या है?
इसके सेंटर में है रित का कॉन्सेप्ट। रित मतलब वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो नेचुरल लॉ, वो हार्मनी जिससे सब कुछ चल रहा है।
रित।
हाँ, वेद हमें सिखाते हैं कि कैसे हम बड़े बड़े यज्ञों, शक्तिशाली मंत्रों और गहरी फिलोसॉफिकल सोच से इस रित के साथ, इस कॉस्मिक हार्मनी के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं।
मतलब मकसद सिर्फ अपना भला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के संतुलन में योगदान देना है।
बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी वाली बात है।
अच्छा, तो इस इतने बड़े ज्ञान को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है ना?
हाँ, मुख्य रूप से चार परतें या हिस्से कह सकते हैं। सबसे पहले हैं संहिता, इनमें ओरिजिनल मंत्र और भजन है।
ठीक है।
फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये संहिताओं की व्याख्या करते हैं, खासकर यज्ञ कैसे करने हैं, उनका मतलब क्या है, ये सब डिटेल में बताते हैं।
मतलब गाइडबुक जैसा।
हाँ, कर्मकांड की गाइडबुक कह सकते हैं। इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक मतलब जंगल के ग्रंथ।
जंगल के ग्रंथ।
हाँ, कहते हैं ये उन ऋषियों ने लिखे जो जंगलों में रहकर सोचते विचारते थे। यहाँ फोकस बाहरी कर्मकांड से हटकर अंदरूनी ध्यान चिंतन पर चला जाता है।
अच्छा, तो ये एक तरह से ट्रांजिशन है।
बिल्कुल, ये बाहरी यज्ञ से भीतरी खोज की तरफ एक पुल है। और सबसे आखिर में और सबसे गहरे हैं उपनिषद।
उपनिषद, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है, वेदांत भी कहते हैं शायद।
हाँ, वेदांत यानी वेदों का अंत या वेदों का सार। ये सबसे गहरी फिलॉसफी वाले हिस्से हैं। यहाँ यात्रा बाहरी दुनिया से पूरी तरह अंदर की ओर मुड़ जाती है, अपनी आत्मा यानी आत्मन और जो परम सत्य है ब्रह्म, उसकी एकता को महसूस करने तक।
वाह, बाहर से अंदर तक का सफर, यज्ञ की वेदी से शुरू होकर अपनी आत्मा तक।
और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें यूनिवर्स कैसे बना, ये चेतना क्या चीज है, हमारे अंदर की सूक्ष्म एनर्जी कैसे काम करती है, अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, सही गलत क्या है, और सबसे जरूरी कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
सब कुछ?
हाँ, सब कुछ इसमें शामिल है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करने के तरीके भी बताते हैं।
मतलब ज्ञान और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ।
बिल्कुल, नॉलेज और एक्सपीरियंस का संगम।
चलिए, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, एक एक वेद को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद।
हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे पहला वेद। कहते हैं लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का है ये।
इतना पुराना?
जी हाँ, इसमें 1028 सूक्त हैं, मतलब भजन, जो 10 मंडलों या किताबों में बटे हुए हैं। सोचिए कितना विशाल और प्राचीन ज्ञान।
इसमें मुख्य रूप से क्या है?
ऋग्वेद की दुनिया ना देवताओं से भरी हुई है। देव, जो प्रकृति की अलग अलग शक्तियों और कॉस्मिक लॉस के प्रतीक हैं, जैसे इंद्र हैं बारिश और बिजली के देवता।
अग्नि?
हाँ, अग्नि आग के देवता, जो धरती और स्वर्ग के बीच मैसेंजर का काम करते हैं। सोम, एक दिव्य पौधा और उसका रस। सूर्य, वरुण, जो व्यवस्था के देवता हैं।
अच्छा,
तो ऋग्वेद कहता है कि इन देवताओं का सम्मान करके, यज्ञ करके, हम ब्रह्मांड की व्यवस्था यानी ऋत को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह प्रकृति के साथ मिलकर जीने का एक तरीका है।
और इसमें कुछ खास सूक्त भी हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है?
हाँ बिल्कुल, जैसे पुरुष सूक्त है, उसमें एक विराट पुरुष से पूरी सृष्टि कैसे बनी इसका वर्णन है, और वर्ण व्यवस्था का भी शुरुआती जिक्र वहीं मिलता है। और एक मेरा फेवरेट है नासदीय सूक्त।
नासदीय सूक्त?
हाँ, ये सृष्टि की शुरुआत पर इतने गहरे सवाल उठाता है, पूछता है कि भाई जब कुछ नहीं था तब क्या था, ये सब कैसे बना, कौन जानता है, शायद वो ऊपर बैठा परम ईश्वर भी ना जानता हो।
क्या बात है, हजारों साल पहले इस लेवल की फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग, कमाल है।
सच में कमाल है। ये दिखाता है कि वो लोग प्रकृति की शक्तियों को सिर्फ बाहरी ताकतें नहीं मानते थे, बल्कि उनमें एक अंदरूनी चेतना, एक इंटेलिजेंस देखते थे।
और मंत्रों की शक्ति पर भी उनका गहरा विश्वास था,
बहुत ज्यादा, कि शब्द और ध्वनि सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उनका असल में दुनिया पर असर होता है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे वेद पर, सामवेद।
सामवेद, संगीत वाला वेद।
धुनों में, सामन में सेट कर दिया।
अच्छा, तो यहाँ गाना जरूरी हो गया।
हाँ, यहाँ मुख्य आइडिया ये है कि गाने से, सही तरीके से गाने से, मंत्रों की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। ध्वनि मतलब शब्द अपने आप में एक बहुत पावरफुल फोर्स है,
इसीलिए उसमें सुर, लय, राग की शुद्धता पर इतना जोर दिया होगा।
बिल्कुल, यज्ञों में एक खास पुजारी होते थे उद्गाता, जिनका काम ही उन मंत्रों को सही सुर लय में गाना था। कहते हैं कि उनकी धुनें इतनी मधुर होती थीं कि वो देवताओं को भी प्रसन्न कर देती थीं।
और इसका असर क्या हुआ, मतलब संगीत के अलावा?
इसका बहुत गहरा असर हुआ। पहली बात तो ये कि इसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी।
हाँ, ये तो है।
दूसरी बात, इसने इस विचार को और मजबूत किया कि पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह के वाइब्रेशन, एक कॉस्मिक म्यूजिक पर बेस्ड है, और सही ध्वनि या संगीत से हम उस कॉस्मिक रिदम से कनेक्ट कर सकते हैं।
मतलब ध्वनि के जरिए दिव्यता तक पहुंचना।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
अच्छा, फिर तीसरा वेद है यजुर्वेद।
यजुर्वेद, इसे आप यज्ञ करने की प्रैक्टिकल गाइडबुक कह सकते हैं, कैसे करें मैनुअल।
अच्छा, इसमें मंत्र कैसे हैं?
इसमें ज्यादातर गद्य में, मतलब प्रोज में, मंत्र और सूत्र हैं, जिन्हें यजुष कहते हैं। यज्ञ करते समय अध्वर्यु नाम के पुजारी इन्हें पढ़ते थे।
और इसका मेन आइडिया क्या है?
मेन आइडिया ये है कि यज्ञ की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी सावधानी और कितनी सटीकता से किया गया है। हर स्टेप, हर मंत्र, हर आहुति परफेक्ट होनी चाहिए। ये एक तरह का साइंस है, रिचुअल साइंस,
जैसे कोई लैब एक्सपेरिमेंट।
हाँ बिल्कुल वैसा ही। और यहीं पर हमें बड़े बड़े यज्ञों जैसे अश्वमेध यज्ञ या सोम यज्ञ की पूरी डिटेल विधि मिलती है।
कर्म के सिद्धांत की बात भी यहीं से शुरू होती है।
हाँ, कर्म का सिद्धांत, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसका एक निश्चित फल मिलता है। इसकी जड़ें भी यजुर्वेद में दिखती हैं। खासकर यज्ञ से जुड़े कर्मों का फल तो बहुत निश्चित माना जाता था। और इसमें सिर्फ बाहरी क्रिया ही नहीं है, इसमें ध्यान लगाने, मन को एकाग्र और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं।
इसकी वो दो शाखाएं भी है ना, कृष्ण और शुक्ल।
जी हाँ, कृष्ण यानी काला यजुर्वेद और शुक्ल यानी सफेद यजुर्वेद। इनमें मंत्रों और उनकी व्याख्याओं को थोड़ा अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है, पर जोर वही है, सही क्रिया के द्वारा कॉस्मिक ऑर्डर से जुड़ना।
ठीक है, अब आते हैं चौथे वेद पर, अथर्ववेद। ये बाकियों से कुछ अलग है, सुना है मैंने।
हाँ, थोड़ा अलग है। जहाँ पहले तीन वेद ज्यादातर बड़े सार्वजनिक यज्ञों पर फोकस करते हैं, वहीं अथर्ववेद का कनेक्शन आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा है, उसके घर, उसके परिवार, उसकी निजी जरूरतों से।
मतलब इसमें किस तरह के मंत्र हैं?
इसमें ऐसे मंत्र, तावीज, टोटके, प्रार्थनाएं हैं जो रोज की समस्याओं से जुड़े हैं।
जैसे?
जैसे बीमारी ठीक करने के लिए मंत्र, बच्चे का जन्म सेफली हो जाए उसके लिए, बुरी नजर या बुरी आत्माओं से बचने के लिए, या यहाँ तक कि किसी का प्यार पाने के लिए भी।
अरे वाह, मतलब ये ज्ञान को बिल्कुल जमीनी स्तर पर ले आता है।
बिल्कुल, इसका मेन मैसेज यही है कि ये जो पवित्र ज्ञान है, इसका इस्तेमाल आप अपनी रोज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कर सकते हैं।
और आयुर्वेद की जड़ें भी यहीं कहीं हैं।
हाँ, इसमें बीमारियों के इलाज के ऐसे तरीके हैं, जड़ी बूटियों का जिक्र है, जो बाद में आयुर्वेद का आधार बने। इसमें थियोजिया यानी देवताओं या शक्तियों का आवाहन करके काम सिद्ध करने की बात भी है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर वाले मंत्र हैं, और सूक्ष्म शरीर जैसे चक्र और नाड़ियों की बात भी मिलती है।
लेकिन ये सिर्फ जादू टोना तो नहीं है?
नहीं नहीं, ये समझना जरूरी है, अथर्ववेद में भी ऋग्वेद जैसे ही बहुत गहरे दार्शनिक भजन हैं। बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि उपनिषदों की जो गहरी सोच है, उसकी जमीन अथर्ववेद ने ही तैयार की थी।
अच्छा, तो ये भी बहुत गहरा है, और यहीं से हम शायद वेदों के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
बिल्कुल, ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें कर्मकांड की जमीन से उठाकर ज्ञान के शिखर तक ले जाती हैं।
तो पहले ब्राह्मण ग्रंथ।
हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ ये संहिताओं में जो मंत्र हैं और जो यज्ञ हैं उनकी डिटेल में व्याख्या करते हैं, उनका मतलब समझाते हैं। ये बताते हैं कि यज्ञ सिर्फ आग जलाना और आहुति देना नहीं है।
तो फिर क्या है
यज्ञ? असल में पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है, एक माइक्रोकॉस्म। उसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज, हर एक्शन का एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है, और यज्ञ को सही ढंग से करके आप असल में कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।
वाह, मतलब यज्ञ एक कॉस्मिक एक्ट बन गया।
बिल्कुल। फिर आते हैं आरण्यक, वन ग्रंथ।
हाँ, जंगल वाले ग्रंथ।
यून ऋषियों ने लिखे जो दुनिया की भीड़भाड़ से दूर जंगलों में रहकर गहराई से सोचते थे। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आता है।
क्या शिफ्ट?
वो बाहरी यज्ञों को अंदरूनी, मेंटल या मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में बदलना शुरू करते हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे यज्ञ की आग अब आपके अंदर की जागरूकता की आग बन जाती है। जो आहुति आप दे रहे हैं वो शायद आपकी सांस है या आपके विचार हैं, तो ये बाहरी कर्मकांड से अंदरूनी रहस्यवाद की तरफ का ब्रिज है।
ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है।
हाँ, और फिर आता है क्लाइमैक्स, उपनिषद,
वेदांत।
हाँ, वेदांत, वेदों का अंत या वेदों का एसेंस। ये वैदिक सोच का सबसे ऊंचा, सबसे गहरा दार्शनिक निचोड़ है। अक्सर गुरु और शिष्य के बीच डायलॉग के फॉर्म में होते हैं ये।
और सवाल?
सवाल क्या पूछते हैं? जिंदगी के सबसे बड़े सवाल, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, सच क्या है, मौत के बाद क्या होता है। और इनका जो जवाब है वो क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि ये जो हमें इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं ना, ये अनेकता, ये असल में एक ही परम सत्य, जिसे वो ब्रह्म कहते हैं, उसी की अभिव्यक्ति है। सब कुछ उसी एक से बना है,
एक ही चीज से।
हाँ, और उससे भी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जो उसकी असली आत्मा है, उसका जो कोर एसेंस है, आत्मन, वो भी वही ब्रह्म है।
मतलब
मैं और वो परम सत्य एक ही हैं।
बिल्कुल,
यही उपनिषदों का सबसे बड़ा मैसेज है। और जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, यानी इस जन्म मरण के चक्कर जिसे संसार कहते हैं, उससे आजादी पाना।
और वो आजादी कैसे मिलेगी?
इसी ज्ञान से, जब इंसान सीधे अनुभव कर लेता है, रियलाइज कर लेता है कि मेरी आत्मा, आत्मन और वो परम सत्य ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है।
वाह, ये तो सोच बदल देने वाली बात है।
हाँ, और यहीं पर हमें वो महान कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ब्रह्म, आत्मन, कर्म, संसार, मोक्ष, जिन्होंने बाद के पूरे इंडियन फिलॉसफी को शेप दिया। ये ज्ञान की चोटी है।
इस हजारों साल के ज्ञान सागर से कुछ खास बातें, कुछ कोर मैसेजेस बार बार सामने आते होंगे।
हाँ बिल्कुल, कई हैं पर कुछ बहुत अहम है। पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना माना, विविधता में एकता,
अनेकता में एकता।
हाँ, ऋग्वेद का वो मशहूर वाक्य है ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति।
मतलब?
मतलब सत्य या ईश्वर एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ब्रह्म, पर चीज एक ही है।
ये समझना कि अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, ये भारत की जो सहिष्णुता की भावना है उसकी जड़ यही है शायद।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा आइडिया है, चेतना ही असलियत है, कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी।
ये आजकल की सोच से थोड़ा अलग है, हम तो सोचते हैं मैटर पहले है, चेतना बाद में आती है।
हाँ, पर वेद कहते हैं उल्टा है, चेतना पहले है, पदार्थ या मैटर उसी से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो असली मैं है वो ये शरीर या ये मन नहीं है, वो तो बदलता रहता है। असली मैं वो शुद्ध चेतना है जो हमेशा रहती है, बदलती नहीं,
ये सोचना ही अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा
है ना। तीसरा, कॉस्मिक ऑर्डर और ड्यूटी का नियम, रित और बाद में धर्म।
रित और धर्म।
हाँ, यूनिवर्स कुछ नियमों से चलता है, जब हम उन नियमों के अनुसार जीते हैं, अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाते हुए जीते हैं, तो न सिर्फ हमें अंदर से शांति मिलती है बल्कि बाहर समाज में और प्रकृति में भी बैलेंस बना रहता है।
तो धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है बल्कि सही तरह से जीना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है।
एग्जैक्टली। चौथा है ध्वनि की क्रिएटिव पावर, मंत्र या शब्द,
साउंड की शक्ति।
हाँ, वेदों का मानना है कि खास ध्वनियों में, खास वाइब्रेशंस में एक खास तरह की एनर्जी होती है, पूरा यूनिवर्स ही वाइब्रेशन है। ओम की ध्वनि को तो सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है।
इसका मतलब हमारे बोलने का, हमारे मंत्र जाप का सच में असर होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं।
सोचिए, हमारी आवाज में, हमारे शब्दों में कितनी शक्ति छुपी है, इसीलिए शायद सोच समझ कर बोलो कहा जाता है, ये भी एक साधना है।
पांचवा पॉइंट,
सब कुछ आपस में जुड़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस। कोई भी चीज अकेली नहीं है, हम सब, ये पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदियां, पहाड़, सब एक बड़े से जाल, एक वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा हैं। हमारे एक काम का असर सब पर पड़ता है।
ये तो आज के जमाने में इकोलॉजी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात होती है बिल्कुल वही है।
बिल्कुल, जड़ें वही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं।
छठा पॉइंट,
चेतना का विकास हो सकता है, कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो सकती है। वेद बताते हैं कि ध्यान से, सही ज्ञान से, अच्छे कर्मों से, हम अपनी चेतना को साधारण जानवरों जैसी इंस्टिंक्टिव लेवल से उठाकर बहुत ऊंचे डिवाइन लेवल तक ले जा सकते हैं।
और ये सबके लिए मुमकिन है।
हाँ हाँ, सबसे अच्छी बात यही है, ये कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलती है, ये हर इंसान की नेचुरल पोटेंशियल है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।
सातवां,
स्पिरिचुअल और मटीरियल लाइफ का इंटीग्रेशन, आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का मेल।
अक्सर लगता है ये दोनों अलग अलग हैं, या तो भगवान का नाम लो या दुनियादारी करो।
हाँ, लेकिन वेद कहते हैं ऐसा नहीं है, सच्ची स्पिरिचुअलिटी आपको दुनिया से भगाती नहीं बल्कि दुनिया में और बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। अंदर की शांति और समझ आपको बाहर की जिम्मेदारियां निभाने में और ज्यादा सक्षम बनाती है। ये या तो ये या वो वाली सोच गलत है, दोनों साथ चलते हैं।
अच्छा,
और आठवां है ईश्वर की धारणा का विकास। हम वेदों में देखते हैं कि कैसे सोच धीरे धीरे कई सारे देवताओं की पूजा से शुरू होकर एक ही परम सत्ता ब्रह्म के विचार तक पहुंचती है, अद्वैत वेदांत तक। ये दिखाता है कि सत्य की खोज एक सफर है, कोई रुका हुआ डेस्टिनेशन नहीं।
और आखिरी नौवां पॉइंट,
वेद सुने हुए ज्ञान है, श्रुति। जैसा हमने शुरू में कहा था, वेद खुद को इंसानी सोच की उपज नहीं मानते, वो कहते हैं ये वो ज्ञान है जो ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना। ये ज्ञान के एक ऐसे सोर्स की तरफ इशारा करता है जो हमारी रोजमर्रा की बुद्धि, हमारे लॉजिक से परे है।
इन गहरी बातों से कुछ ऐसे वाक्य, कुछ कोट्स निकले हैं जो अमर हो गए।
हाँ बिल्कुल, जो सदियों से हमारे कल्चर में गूंज रहे हैं, जैसे वो ऋग्वेद वाला, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं, ये टॉलरेंस और अनेकता के सम्मान का आधार है।
और उपनिषदों के महावाक्य,
हाँ, जैसे छांदोग्य उपनिषद का, तत्त्वम असि, तुम वही हो, वो जो परम सत्य तुम ढूंढ रहे हो वो तुमसे अलग कहीं बाहर नहीं है, तुम खुद वही हो।
ये जानना ही शायद सबसे बड़ी खोज है।
बिल्कुल। फिर बृहदारण्यक उपनिषद का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये घमंड वाली बात नहीं है।
नहीं
नहीं, ये अपनी छोटी सी मैं वाली पहचान को छोड़कर अपनी असली, असीम, डिवाइन पहचान को जान लेने का एक्सप्रेशन है, ये डर और लिमिटेशंस को तोड़ देता है।
और वो सर्वम खलविदम ब्रह्म।
हाँ, ये भी छांदोग्य उपनिषद से है। इसका मतलब है ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये पूरा यूनिवर्स असल में ब्रह्म ही है।
मतलब हर चीज में, हर कण में वही दिव्यता है।
एग्जैक्टली। ये हमें प्रकृति के प्रति, हर जीव के प्रति एक गहरा सम्मान सिखाता है।
और आखिर में सत्यमेव जयते।
हाँ, मुंडक उपनिषद से, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिरकार सच्चाई ही जीतती है। और ये तो हमारे देश का नेशनल मोटो भी है।
सही बात है। ये सारे विचार सुनने में तो बहुत गहरे और अच्छे लगते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इन बातों को उतारें कैसे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
बिल्कुल सही सवाल है। तो सबसे पहले पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में।
कैसे?
उपनिषद हमें साक्षी भाव सिखाते हैं, मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना उनसे जुड़े एक दूरी से देखना, जैसे आप बादल देख रहे हो। इससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार बनते हैं, मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं।
हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है, और सेहत के लिए, हेल्थ और वेलनेस।
वेद मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की बात करते हैं। आज मेडिकल साइंस भी ये मान रहा है। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रकृति के साथ हार्मनी में रहना, ये सब चीजें हमें फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखती हैं। आयुर्वेद की तो जड़ें ही वेदों में हैं।
और रिश्ते, रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं इससे?
जरूर, जब हम ये समझने लगते हैं कि सामने वाले इंसान में भी वही आत्मा, वही चेतना है जो मुझमें है, तो गुस्सा कम आता है, करुणा ज्यादा आती है, धैर्य रखना, माफ करना आसान हो जाता है, और रिश्तों में सच बोलना, अपना धर्म निभाना, ये उन्हें और मजबूत बनाता है।
कामकाज की दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ, लीडरशिप,
वहां भी धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। अपना नैतिक कर्तव्य समझना, सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं सोचना बल्कि ये देखना कि लंबे समय में क्या सही है, मेरे एक्शन का पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, ये सोच लीडरशिप को बेहतर बनाती है।
और पर्यावरण, समाज,
जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस, तो हम अपने आप प्रकृति का सम्मान करने लगते हैं, पानी बर्बाद नहीं करते, पेड़ लगाते हैं, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरों की मदद करना असल में खुद की ही मदद करना है, सब एक ही तो है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल पीस के लिए भी कुछ है, आजकल ये बहुत बड़ी जरूरत है।
हाँ, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये जानना कि हमारी जो असली पहचान है, वो आत्मा, वो चेतना, वो इन बाहरी उथल पुथल से परे है, हमेशा शांत है। ये जानने से ही बहुत हिम्मत मिलती है। फिर ध्यान और मैं कौन हूँ, सेल्फ इंक्वायरी जैसे सवालों पर विचार करके हम उस अंदरूनी शांति से जुड़ सकते हैं।
और एक बात आपने कही थी, रोज के कामों को साधना बनाना।
हाँ, जैसे आरण्यकों ने बाहरी यज्ञ को अंदरूनी साधना बना दिया था, वैसे ही हम अपने रोजमर्रा के काम, चाहे वो सुबह उठ के चाय बनाना हो, या ऑफिस का कोई काम हो, या घर की सफाई हो, अगर हम उसे पूरी जागरूकता से, पूरे ध्यान से, एक तरह के सम्मान के साथ करें, तो वो काम भी मेडिटेशन बन जाता है, एक यज्ञ बन जाता है। यही असल में माइंडफुलनेस है।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है।
बिल्कुल।
तो इन सारी बातों को समेटते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों से मिला सबसे कीमती सबक क्या है आपके लिए?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और दुनिया में प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होना, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि अंदर की गहरी समझ हमें बाहर की दुनिया में और ज्यादा असरदार तरीके से, और ज्यादा शांति और खुशी से जीने में मदद करती है। ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे गहरी बात यह है कि हम सब जिंदगी भर क्या ढूंढते हैं, खुशी, सुरक्षा, जिंदगी का मतलब, है ना?
हाँ।
वेद हमें याद दिलाते हैं कि ये सब चीजें कहीं बाहर से हासिल करने वाली नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। हमारी अपनी असली नेचर ही आनंद है, शांति है, मतलब है। बस उसे ढूंढना है, उसे पहचानना है, उसे जीना है। तो ये चीजों को पाने की दौड़ से हटकर खुद को खोजने और दुनिया में अपना रोल निभाने की तरफ एक फंडामेंटल शिफ्ट है।
वेद हमें इंसान होने की, हमारी पोटेंशियल की एक बहुत बड़ी, एक विशाल तस्वीर दिखाते हैं, है ना?
बिल्कुल। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल चुनौतियों के सामने भी, मतलब, आश्चर्यजनक रूप से रेलिवेंट लगता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ काटने के लिए नहीं है बल्कि पूरी तरह से खिलने के लिए है।
और इनकी सबसे खास बात शायद ये है कि ये सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं करते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये उस ज्ञान को खुद अनुभव करने के प्रैक्टिकल तरीके भी देते हैं। ध्यान, मंत्र, योग, यज्ञ का अंदरूनीकरण।
हाँ, इसीलिए ये किसी भी कल्चर, किसी भी बैकग्राउंड के इंसान के लिए जो सच को खोजना चाहता है, आज भी उतने ही काम के और एक्सेसिबल हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये हमारी आत्मा की खोज के लिए गाइड मैप जैसे हैं।
बहुत खूब।
मिलेंगे
अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।